आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 1334 अवर अभियंता, संगणक और फोरमैन को सौंपे नियुक्ति पत्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ, कल तीनों सेनाओं के पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन जेसीसी को करेंगे संबोधित। राज्य कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए दिया गया 1 महीने का अतिरिक्त समय। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में फिरोजाबाद और रायबरेली को अलग अलग श्रेणी में मिला पहला स्थान। और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समानांतर बनेगा एक और एक्सप्रेसवे, एनएचएआई ने दी प्रोजेक्ट को मंजूरी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 1334 अवर अभियंता, संगणक और फोरमैन को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पाने वालों में हर जनपद का प्रतिनिधित्व दिखता है। नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का पालन करते हुए बिना भेदभाव प्रतिभाशाली युवाओं को नियुक्ति की प्रक्रिया से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर सरपट दौड़ रहा है और देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है।
पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर नियुक्ति की जो प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुचतापूर्ण तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ी है। हम लोग 6.5 लाख से अधिक सरकारी नियुक्ति प्रदेश के युवाओं को देते हैं। इन युवाओं ने अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ प्रदेश को दिया। आज जब हमारे पास मैन पावर की कमी पूरी हुई, तो यही प्रदेश जो देश के विकास का बैरियर माना जाता था, आज सरपट तरीके से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही प्रदेश जो बैरियर था, आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। आज से 7.5 वर्ष पहले यह प्रदेश देश की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था, कि आज यही प्रदेश नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में जनपद स्तरीय रोजगार और ऋण मेले में 5,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसके साथ ही 7,138 लाभार्थियों को 510 करोड़ रूपये से अधिक के ऋण और 15,000 से अधिक युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपने हर दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है। जीरो टॉलरेंस नीति के साथ हर बहन, बेटी, नागरिक और व्यापारी को सरकार सुरक्षा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत 45 जनपदों के 555 आंगनबाड़ी भवनों का लोकार्पण किया। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के बैंक खातों में बीमा प्रीमियम और यूनिफॉर्म के लिए 37,78,00,000 रूपये की राशि भेजी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को पूर्ण करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि बच्चे स्वस्थ होंगे तभी भारत समृद्ध होगा। 3 दिवसीय दौरे पर आज लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में तीनों सेनाओं के पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन जेसीसी को संबोधित करेंगे। देश की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन जेसीसी का आज लखनऊ में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के साथ थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी भी मौजूद रहे। सम्मेलन में तीनों सेनाओं के अन्य शीर्ष अधिकारियों ने भी भाग लिया। देश में मौजूद सुरक्षा स्थिति और सशस्त्र बलों की रक्षा तैयारी की समीक्षा करते हुए सीडीएस ने विभिन्न क्षेत्रों में एकीकरण को बढ़ाने पर जोर दिया। 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए। राज्य कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए एक महीने का और समय दिया गया है। पहले 31 अगस्त तक ये मोहलत दी गई थी और ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने की बात कही गई थी। इस अवधि तक लगभग 2,44,000 कर्मचारियों ने ब्यौरा नहीं दिया था। कर्मचारियों की मांग पर एक महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में प्रदेश के कई शहरों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में आगरा ने तीसरा स्थान हासिल किया है, जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन के प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में फिरोजाबाद ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जो वायु प्रदूषण को कम करने में उसके उल्लेखनीय प्रयासों को दर्शाता है। झांसी ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और इस श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया है। शहर का औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण और शहरी हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देना वायु गुणवत्ता में सुधार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में रायबरेली ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ये वार्षिक सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत आयोजित किया गया था, जो शहरों के वायु गुणवत्ता सुधार उपायों का मूल्यांकन करता है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। 2 सितंबर से 25 सितंबर तक भाजपा अपने सदस्यता अभियान के प्रथम चरण के बाद 10 अक्टूबर से दूसरे चरण की शुरुआत करेगी। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आज लखनऊ में भाजपा के सदस्यता अभियान के आगामी चरणों की जानकारी दी। श्री पाठक ने बताया कि दूसरा चरण 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। 11 से 17 सितंबर तक घर घर जाकर भाजपा कार्यकर्ता लोगों को सदस्यता अभियान के लिए संपर्क करेंगे। दूसरे चरण के तहत 10 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान होगा। जो भी सदस्य इस दौरान 100 साधारण सदस्य बनाएगा, उसे सक्रिय सदस्य के रूप में सदस्यता मिलेगी। वहीं हर रविवार को भाजपा अटल सदस्यता अभियान मनाएगी। इस दिन पार्टी के सांसद और विधायक कम से कम 20 लोगों को भाजपा का सदस्य बनाएंगे।
भाजपा प्रत्येक रविवार को अटल सदस्यता पर्व मनाएगी, क्योंकि ये पूज्य अटल जी का शताब्दी वर्ष है। 100वीं जयंती हम लोग मनाएंगे 25 दिसंबर को, तो हम लोग अटल सदस्यता पर्व प्रत्येक रविवार को मनाने का काम करेंगे। सदस्यता पर्व के दिन सभी माननीय सांसद विधायक अपने आसपास के कम से कम 20 लोगों को सदस्य बनाएंगे।
NHAI ने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समानांतर एक और एक्सप्रेसवे बनाने के लिए सर्वे का काम पूरा होने के बाद अपनी सहमति दे दी है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से न केवल नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव कम होगा, बल्कि 10 लाख से ज्यादा वाहन चालकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी आसानी होगी। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 32 किलोमीटर की होगी, जिसमें 28 किलोमीटर नोएडा क्षेत्र और 4 किलोमीटर एयरपोर्ट से लिंक करने में बनाया जाएगा। इसका पूरा होने से लखनऊ तक का सफर वाहन चालक बिना किसी रूकावट के कर पाएंगे। NHAI ने पुस्ता रोड समेत अन्य विकल्पों पर सर्वे कर अपनी रिपोर्ट बना ली है। नोएडा प्राधिकरण के CEO के मुताबिक NHAI की सहमति मिलने के बाद अब एक कंपनी को हायर करके दोबारा सर्वे कराया जाएगा, ताकि DPR तैयार कर काम को शुरू किया जा सके। इस प्रोजेक्ट को बनाने में करीब 2 से 2.5 हजार करोड़ रुपए का खर्च होगा। प्रदेश सरकार ने राज्य के तराई क्षेत्र के जिलों में लोगों, विशेषकर बच्चों पर हमला करने वाले भेड़ियों को मारने के आदेश दिए हैं। पीलीभीत जिले में समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि अगर वन विभाग की टीमें भेड़ियों को पकड़ने में विफल रहती हैं तो उन्हें मार दिया जाए। वन विभाग की टीमों ने ड्रोन कैमरों के जरिए कैद किए गए 6 भेड़ियों में से 4 को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। बाकी 2 भेड़ियों की तलाश में 20 से ज्यादा टीमें लगाई गई हैं, जो बहराइच, लखीमपुर खीरी और दूसरे प्रभावित इलाकों के जंगलों में सर्च अभियान चला रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 1334 अवर अभियंता, संगणक और फोरमैन को सौंपे नियुक्ति पत्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। कल तीनों सेनाओं के पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन JCC को करेंगे संबोधित। राज्य कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए दिया गया 1 महीने का अतिरिक्त समय। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में फिरोजाबाद और रायबरेली को अलग अलग श्रेणी में मिला पहला स्थान। और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समानांतर बनेगा एक और एक्सप्रेसवे। NHAI ने दी प्रोजेक्ट को मंजूरी। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।